अस्सलाम वालेकुम। आज भी रहे अक्टूबर की 3 तारीख, पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तानी वफद ने गुज़श्ता माह न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के कई आला अहदेदारों से मुलाकात की, और जिसके बाद अब पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा भी अमरीका का सरकारी दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक इस दौरे के दौरान जनरल बाजवा ने न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ड्यूप से मुलाकात की है। बताया जाता है कि जनरल बाजवा ने न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मिलिट्री एडवाइजर बेरामे ड्यूप से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा अमरीका के एक हफ्ते के दौरान वॉशिंगटन में आला अमरीकी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। अगरचे पाकिस्तान और अमरीका की तरफ से इन मुलाकातों के बारे में अभी कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ज़राए इब्लाग में सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक जनरल बाजवा की अमरीका के वज़ीर दिफा लाइट ऑस्टिन से भी मुलाकात मुतवक्के है। पाक फौज के सरबराह एक ऐसे वक्त अमरीका का दौरा कर रहे हैं जब उनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर के आखिर में ख़त्म हो रही है, लेकिन मुबसरीन का कहना है कि जनरल बाजवा का अमरीका का दौरा काफ़ी अरसे पहले से तय किया जा रहा था और उनका दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया महीनों में होने वाले आला सतह के राबतों का तसलसल है, जो इस बात का मजहर है कि इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामसन हैं। और अब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मेनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने खातून जज को मुबैना धमकी देने के मुकदमे में तौहीनी अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। समाअत के मौके पर इमरान खान वकला के हमराह कमरे अदालत में मौजूद थे। केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने मुत्तफिका तौर पर इमरान खान के खिलाफ तौहीनी अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया। चीफ जस्टिस अथर मेनुल्लाह ने कहा कि हमने इमरान खान का बयान हल्फी देख लिया है और अदालत उनके बयान से मुतमईन है। ये लार्जर बैंक का मुत्तफिका फैसला है। अदालती मुआविन ने एतराज उठाया कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस अथर मेनुल्लाह ने कहा कि आप अपनी मारूफजात जमा करवा दें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक ट्वीट में बताया है कि उन्हें पासपोर्ट वापस कर दिया गया है। मरियम नवाज का कहना है कि उनका पासपोर्ट 3 बरस तक जब्त रहा और जिस केस में यह जब्त रहा वो केस उनके खिलाफ कभी नहीं बना। हुकूमत पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के रुझान के बावजूद 1 अगस्त से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली तब्दीलियों के साथ मुसलसल इजाफा ही किया था, लेकिन गुज़श्ता माह के अख्तिताम पर 30 सितंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 5.32% की बड़ी कमी देखी गई जब नए वजीर खजाना इसाक डार ने हलफ उठाया। 30 सितंबर की रात पेट्रोल की कीमतों में 12.33 रुपये फी लीटर कमी की गई, जबकि डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट स्पीड डीजल की कीमतों में भी कमी की गई। न सिर्फ ये बल्कि पेट्रोल की कीमतों में IMF से माहदे के तहत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने के बजाय उसमें 5 रुपये की कमी की गई। काबुल में काज तालीमी मरकज पर हमले के खिलाफ तलबा का एहतजाज 3रे रोज भी जारी रहा, जिसमें 43 तलबा हलाक और 83 जख्मी हो गए थे। हलाक होने वालों में तालिबात भी शामिल थीं। काबुल, हेरात और बामियान के बाद पीर को खवातीन के ग्रुप ने सूबे बल्ख के सूबाई दारुलहुकूमत मजार शरीफ में एक रैली निकाली। इत्तलात के मुताबिक तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने پیر کی صبح طالبات کو ان کے ہاسٹل میں بند کر دیا۔ طالبان نے کابل، ہرات اور بامیان شہروں میں بھی طالبات کے احتجاج کو روکا اور ان کے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اور کئی طالبات کو مارا پیٹا۔ آئی سی آر سی کا کہنا ہے کہ غربت افغان عوام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، کیونکہ دسیوں ہزاروں افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور گزر اوقات کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آئی سی آر سی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بین الاقوامی حمایت کے بغیر صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے ملک میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے ایک اندازے کے مطابق 97% افغان غربت کا شکار ہیں۔ ایجنسی نے ٹویٹ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے لیے ہائی کمشنر کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو بہتر زندگی کے لیے اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 6 روزہ دورے سے پہلے علاقے میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کے حملوں اور ان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 3 عسکریت پسند اور 1 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد حکام نے علاقے میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے اور امیت شاہ کے دورے کے لیے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ منگل سے شروع ہونے والے بھارتی وزیر داخلہ کے اس دورے کو مقامی سیاسی حلقوں میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بھارت کے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ احکامات کے مطابق جموں کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ یہ انتخابات اگلے سال مارچ اور اپریل میں کرائے جانے کا قوی امکان ہے۔ بھارت میں مقامی سطح پر تیار ہونے والے جدید ٹیکنالوجی اور خصوصیات کے حامل لڑاکا ہیلی کاپٹروں کو فضائیہ کے دفاعی بیڑے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پیر کو ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں ہیلی کاپٹروں کی بھارتی فضائیہ میں شمولیت کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل وی آر چودھری بھی موجود تھے۔ اور اب ایک اعلان، کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹیکٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں یا ہماری اسمارٹ فون ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو اینڈرائڈ اور ایپل دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہیں۔ اعلان ختم ہوا اور اب باقی خبریں۔ یوکرین کی افواج نے پیر کو ملک کے جنوب میں خیرسن کے علاقے میں مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں اور حالیہ دنوں میں مشرق میں روس کے خلاف جوابی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی کامیابیوں میں اضافہ کیا ہے۔ خیرسن میں روس کے تعینات اہلکاروں نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے خیرسن میں کچھ بستیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ علاقہ ان 4 میں سے ایک ہے جن کے ساتھ روس نے گزشتہ ہفتے غیر قانونی طور پر الحاق کیا تھا۔ خیرسن میں پیش رفت اتوار کے روز یوکرینی فوج کے اس اعلان کے بعد ہوئی کہ انہوں نے مشرقی لاجسٹک مرکز لیمان کا مکمل کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جو اس علاقے کے اندر ہے جس پر گزشتہ ہفتے روس نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ زیلنسکی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک مختصر ویڈیو کلپ میں یہ اعلان کیا کہ لیمان کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ روس نے اتوار کو لیمان کی صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ہفتے کے روز کہا کہ اس کے فوجی علاقے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ یوکرین کی افواج ان کا گھیراؤ کرنے والی ہیں۔ روس کی لیمان کی شکست میدان جنگ میں سب سے بڑی شکست تھی، جبکہ یوکرینی افواج نے گزشتہ ماہ شمال مشرقی یوکرین میں خارکیف کے علاقے میں گھس کر روسی افواج کو اپنی سرحد کی طرف پیچھے دھکیل دیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن آج پیر کو پورٹو ریکو کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ سمندری طوفان فیونا سے بحالی کی کوششوں کا جائزہ لے سکیں۔ اس طوفان سے گزشتہ ماہ اس امریکی علاقے کے کچھ حصوں میں تباہی ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن پورٹو ریکو کے لوگوں کو زیادہ محفوظ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں مدد کے لیے अपनी इंतजामिया के अजम का इजहार करेंगे। बाइडन बुध को जुनूब मशरकी अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का भी दौरा करेंगे, जो गुज़श्ता हफ्ते समंदरी तूफान आयान से मुतासिर हुई है। दुनिया के मुतादिद मुल्कों में हजारों लोग ईरान में एक नौजवान खातून की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद शुरू होने वाले मुजाहरों में पकड़ धकड़ की मजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं। नॉर्वे में कायम ग्रुप ईरान ह्यूमन राइट्स ने इतवार को बताया कि पकड़ धकड़ में कम अज कम 92 अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने इतला दी है कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले मुजाहरों के बाद से कम अज कम 41 मुजाहरीन और पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। ईरान के मुजाहरीन की हिमायत में दुनिया भर में हफ्ते के रोज मुजाहरे हुए, जिनमें वॉशिंगटन DC, मॉन्ट्रियाल, रोम, लंदन, फ्रैंकफर्ट और सोल शामिल हैं। मॉन्ट्रियाल, वैंकूवर, टोरंटो और दारुलहुकूमत ऑटवा समेत कैनेडा के कई शहरों में हजारों लोगों ने मार्च किया। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़ में हलाक होने वाले 125 अफराद में से कुछ के अहले खाना और दोस्त उस वक्त गम से निठाल हो गए जब मुतासरीन की लाशें घर वापस पहुंचाई गईं। मरने वालों में 17 बच्चे भी शामिल थे। स्पोर्ट्स के किसी तकरीब में यह दुनिया की एक मोहलिक तरीन भगदड़ थी। सदर जोको वोदोदो ने सिक्योरिटी के तरीक़ेकार की छानबीन का हुक्म दे दिया है और फीफा के सदर ने अमवात को फुटबॉल में शामिल सब के लिए एक तारीख दिन और समझ से बालतर एक सानिहा करार दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। आप अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।